ॐ शांति, ॐ शांति, ॐ शांति। हम सभी बहुत नशे से कहते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, परमात्मा स्वयं शिक्षक बन हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं। रचयिता और रचना का ज्ञान हमें दे रहे हैं। आज दुनिया में कई प्रकार की पढ़ाइयां हैं, कई प्रकार के विषय हैं, कई प्रकार की डिग्रीज लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हमारी पढ़ाई सबसे भिन्न है। अनेक प्रकार के विश्वविद्यालय हैं दुनिया में, लेकिन यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय केवल एक ही है, जहां स्वयं ईश्वर परमात्मा हमें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। वहां अनेक प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं और यहाँ हम क्या कहते हैं, भगवान हमको चार मुख्य विषय पढ़ाते हैं। कई बार हम सहज रूप से कह देते हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चार विषय हैं, लेकिन ये चारों ही जो शब्द है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये तो कॉमन शब्द है, दुनिया में भी इनका उपयोग होता है। तो हम इससे कैसे भिन्न हैं? तो हमें इन चारों शब्दों को किस रूप में सुनाना है, क्योंकि अगर हम कहते हैं या ज्ञान हम सीखते हैं तो दुनिया में तो बहुत प्रकार का ज्ञान है, कितने सारे पुस्तकालय, लाइब्रेरीज किताबों से भरी पड़ी है, और यही कहते हैं सब में ये ज्ञान के पुस्तकालय है। पुस्तकालय को ज्ञानालय भी कहते हैं, ज्ञान है उसके अंदर। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान ये कहीं भी नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान केवल एक परमात्मा ही हमको दे सकते हैं। आज जितने भी प्रकार की विचारधाराएं हैं वो सब अलग अलग फिलॉसफी है, अलग अलग दर्शन है, अलग अलग लोगों के द्वारा जो उनके विचार है वो उन्होंने किताबों में लिखे हैं। लेकिन हम इस नशे से कहते हैं यहाँ कि भगवान हमें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। किसको कहेंगे ईश्वरीय ज्ञान, जिसमें आत्मा का ज्ञान हो, परमात्मा का ज्ञान हो, कर्मों का ज्ञान हो, समय का ज्ञान हो, ड्रामा का ज्ञान हो, ये ईश्वरीय ज्ञान है, जिसमें रचयिता रचना की आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान हो, जिसके लिए बाबा कहते हैं मैं आकर के तुम बच्चों को तीसरा नेत्र देता हूँ। इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम तीनों कालों को देख सकते हो, तीनों लोकों को देख सकते हो, अपना भविष्य देख सकते हो, अपना भूतकाल देख सकते हो, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जिसको दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि, ये सौगात भगवान हमको इस समय दे रहे हैं, जिस समय जिससे राइट और रॉन्ग, अच्छा बुरा सही गलत, इसकी हमें सही पहचान मिलती है। कितनी बातें जो आज तक हम सुनते आए थे, अभी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम महसूस करते हैं कि हम कितना गलत सोचते थे। और हर मुरली में बाबा कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, आज तक क्या समझते थे और भगवान ने आकर के क्या समझाया है। अपने आप को देह समझते थे, भगवान ने आकर हमें समझाया तुम देह नहीं आत्मा हो। परमात्मा को हम सर्वव्यापी समझते थे, अब परमात्मा ने स्वयं बताया मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, मैं तो परमधाम का वासी हूँ, मैं तो आता हूँ अधर्म के समय। तो पहले हमारी समझ क्या थी और अभी बाबा ने कैसे हमको सही समझ देने के बाद हमारी बुद्धि को ही बदल दिया। कहाँ 84 लाख योनि समझते थे और कहाँ बाबा कहते केवल 84 जन्म, और वो भी मनुष्य चोले में, कितना अंतर हो गया। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट, इतना अंतर जो दुनिया समझती और हमको जो भगवान ने ज्ञान दिया है, उसके आधार से हमारा तीसरा नेत्र खुल गया है। अभी कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हम कहेंगे हमको समझ में नहीं आता। अगर समझ में नहीं भी आता है तो थोड़ा धीरज धरो, आपको आ जाएगा समझ में। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि अंदर में जो भूसा भरा हुआ है ना और बातों का, उसको जब तक निकालेंगे नहीं तो ये ज्ञान कैसे बैठेगा, पहले उसको भूलना पड़ेगा। एक होता है इंग्लिश में शब्द कहते हैं टू फॉरगेट, उसको भूल जाना। कई बातें भूल जाते हैं, कितना पढ़ते हैं कहाँ याद रहता है, भूल जाते हैं। तो एक होता है जो पढ़ा हुआ है उसको भूल जाना, और दूसरा होता है जो पढ़ा हुआ है ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं जो लर्न हुआ है उसको अनलर्न करना है, अनलर्न वापस जाना है। जैसे छोटा बच्चा होता है, कितना इनोसेंट, उसको कुछ पता नहीं है, छोटा बच्चा बहुत इनोसेंट, बहुत नादान, बहुत निर्दोष, ऐसा हमको वापस बनना है, बच्चा बन जाना है, क्लीन स्लेट रखनी है। क्योंकि भगवान जो हमको पढ़ाते हैं वो एकदम नया। उस दिन भी बाबा ने कहा ये नई नॉलेज है, अगर वही शास्त्रों की बातें होती तो भगवान को आना नहीं पड़ता, वही शास्त्रों की बातें होती तो उससे तो हम नीचे ही उतरते आए हैं, भगवान के नजदीक नहीं गए हैं। वही शास्त्रों की बातें होती उससे तो मनुष्य को आज अभिमान चढ़ गया है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे सभी वेदों शास्त्रों का पता है, बड़ा बड़े बड़े श्लोक कंठस्थ करके सुनाते हैं, अर्थ भी निकालते हैं, बहुत बताते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं खुद कितना प्रैक्टिकल में लाते हैं, धारणा है वो तो वही जाने। इसलिए थियोरी बहुत है, लेकिन जो सच्ची प्रीत ईश्वर के साथ चाहिए, जो समर्पण महिता सचमुच चाहिए भगवान के प्रति, वो कहाँ है। और ही ज्ञान का अभिमान आ जाता है, और ज्ञान का अभिमान आ गया वो तो बहुत खतरनाक है। अज्ञान है और कह देते अज्ञान है वो फिर भी ठीक है कि हमें नहीं मालूम। बाबा कहते हैं ना वेदों में तो यही लिखा है ईश्वर के बारे में नेति देति, नहीं जानते नहीं जानते, नहीं अंत, उनका अंत हम नहीं पा सकते हैं। तो वो फिर भी सच्चे थे, नहीं पा सकते, सच बता दिया। लेकिन यहाँ सच तो क्या, बाबा कहते रत्ती भर भी सच नहीं, झूठ में रही झूठ रत्ती भी सच नहीं। और इतना बड़ा चढ़ा करके बाबा कहते कन रस बना दिया है, इतना कन रस जो हमारे जीवन से तो जैसे वो दूरी हो गया, लगता है कि भाई हमारा तो क्या लेना देना उनसे। हाँ चलो राम की सीता चोरी हो गई ठीक है ना, हमारा क्या लेना देना। वो तो राम को चिंता है, हमको थोड़ी चिंता है कि राम की सीता चोरी हो गई। लेकिन ऐसा कनरस बना करके सुनाते, ऐसा कनरस बनाते हैं जो लोग सुनते 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 रोने लगते, अरे राम की सीता चोरी, जैसे उसकी अपनी पत्नी चोरी हो गई, जैसे उसकी अपनी पत्नी चोरी हो गई, ऐसे समझ लेते। परंतु है सारा कनरस। इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा कथा नहीं सुनाते हैं, ये वो कथाएं सुनाते, कथा कहानियां, कथाएं कथा कहानियां। और भगवान तो आकर के ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से सदगति होती है, जिस ज्ञान से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। तो वो ज्ञान जो तीसरा नेत्र हमारा खोल देता है, अब वो ज्ञान भगवान ने हमें दिया है और वो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। तो जब ज्ञान शब्द कहते हैं तो केवल ज्ञान कहेंगे तो समझेंगे दुनिया में भी मिलता है ज्ञान, लेकिन आत्मा का ज्ञान क्या होता है बाबा कहते कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। बोले आत्मा आत्मा कह देते हैं, कोई नहीं जानता। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो खुद से भी दूर तो ईश्वर से भी दूर हो गए। फिर कह देंगे आत्मा तो निर्लेप है, तो खाओ पियो मौज करो कुछ भी करो, शरीर पर लेप शेप लगता है, आत्मा को थोड़ी कुछ होता है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा ही है। और फिर आत्मा के लिए कहेंगे परमात्मा है तो सब जगह है, तो सब आत्मा परमात्मा, बस जिसको बाबा कहते हैं हाँ आटे का गोबाटा, एक सिंधी में कहावत है आटे का गोबाटा। अभी आटा गूंदना है, अब गूंदना आटा है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है ना, अब एक साथ इतना पानी डाल दिया वो आटा सारा उसमें एकदम जैसे लप्पी जैसा लई लई हो गया, अब रोटी क्या बनेगी उसमें से, कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या करना है इसका। तो इसीलिए भगवान आकर के हमें सत्य ज्ञान देते हैं और यही बाबा कहते हैं यही सच्चा सत्संग है, क्योंकि सत्य परमात्मा के साथ संग है। उस सत्य को अगर जाना तो ऑटोमेटिकली उस झूठ को हम खत्म कर सकते हैं, परंतु बुद्धि से भुलाने के लिए उसको फिर जो कुछ सुना है सीखा उन सब को वापस ले जाना, वापस जाना है, अनलर्न करना है, बच्चा बन जाना है, ताकि जो भगवान हमें सुनाते हैं वो हम सुने। कई कहते हैं ना हम कैसे समझे यही सत्य ज्ञान है, तो हम कहते हैं कि पहले आप ट्राई तो करो, समझने की कोशिश तो करो, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि सत्य ज्ञान क्या है, अभी तक हम क्या समझते थे। फिर दूसरा विषय हमारा योग है। अब केवल योग कह दिया तो भी कहां लोग समझते हैं, मुंह जाते हैं, कितने प्रकार के योग है आज दुनिया में, कितने प्रकार के योग है। गीता के अंदर ही इतने प्रकार के योगों का वर्णन है, एक एक चैप्टर गीता का एक एक योग से जुड़ा हुआ है। और बाबा कहते हैं इन सब का जो सार है वो राजयोग है, राजाई पाने के लिए योग है ये, सन्यासी बनने के लिए योग नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कर्म योगी बन करके, कमल फूल समान रह करके जनक राजा मिसल सच्चा योगी बनना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन फंसना कहीं भी नहीं है, कुछ नया जोड़ना भी नहीं है, पर निभाना जरूर है। ऐसा योग हमको भगवान सिखाते हैं। तो योग शब्द को भी आज इतना कंफ्यूजन हो गया, इस शब्द का इतनी मूज हो गई है, जो लोगों ने केवल शारीरिक क्रियाओं को योग समझ लिया, योग का अपभ्रंश करके योगा कह करके, तो और ही उस सत्य योग से तो बहुत दूर हो गए हैं। चलो उसमें आठ अंग बताते हैं, योग के आठ अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। अब उसमें भी यम नियम को तो कभी छूते भी नहीं है, यम नियम पर तो कभी ध्यान जाता ही नहीं है। चलो आसनों पर थोड़ा ध्यान गया, प्राणायाम पर गया, लेकिन उसके बाद जो प्रत्याहार माना है, विड्रॉल, सब बातों से बुद्धि को किनारे में किनारा करना बुद्धि से, फिर वो ध्यान, ऐसी एकाग्रता, फिर वो धारणा, इतना वो स्वरूप बन जाना, तब समाधि, समान परमात्मा के समान, वो तो बहुत ऊंची चीज है। तो केवल कुछ क्रियाएं कर लेना, कुछ आसन कर देना, कुछ श्वास चढ़ाना और निकालना, प्राणायाम थोड़ा सा कर लेना, बस योगा कह करके हम तो योगा करते हैं। और बाबा कहते हैं योग तो बहुत बड़ी चीज है। अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, ये सबसे योग का सार है, ये योग का सार है। इसीलिए बार बार गीता में भी आता है, अर्जुन इस मन को मेरे में लगाओ, इस मन को मेरे में लगाओ, बार बार भगवान को ये कहना पड़ता है, इस मन को मेरे में लगाओ। और अर्जुन की बार बार यही शिकायत है, क्या करे, मन लगता नहीं, मन लगता नहीं, मन लगता नहीं, मन बहुत चंचल है, मन बहुत पापी है, मन दुष्ट है, मन नीच है, मन घोड़ा है, मन तो लगता नहीं। चलो मन नहीं लगता है तो स्थूल साधन दे दिया, चलो मंत्र जाप करो, मुख से कुछ शब्द बोलो, माला फेरो, सामने कोई मूर्ति रखी हो उसका ध्यान करो, तो आंखों को तो काम मिल जाता है, उंगलियों को भी काम मिल जाता है, मुख को भी काम मिल जाता है जाप करने का, लेकिन मन को तो काम नहीं मिलता है, मन तो भटकता ही रहता है। इसलिए भगवान ने कहा इस मन को मेरे में लगाओ, उसके लिए दो दो कदम बताए। वो दो कदम तो मनुष्य भूल ही गए हैं, और वो दो कदम क्या बताए हैं गीता में आते हैं, एक है वैराग्य और दूसरा है अभ्यास। ये दो कदम है मन को ईश्वर में लगाने के लिए। जब तक वैराग्य नहीं आया है संसार से, तब तक मन लगेगा ही नहीं। और वैराग्य क्यों नहीं आया है, क्योंकि देह का अभिमान बहुत है, इसलिए आत्म अभिमानी बनना बहुत जरूरी है। तब बेहद का वैराग्य आएगा, तब ये मन स्थिर होगा, लेकिन उसमें भी फिर खुद को ही नहीं जानते, ईश्वर को ही नहीं जानते, मन स्थिर करेंगे कैसे? फिर कहेंगे बस जो श्वास आपका चल रहा है ना, उस पर ही ध्यान करो, कई ऐसे योग सिखाते। तो बाबा कहते ये श्वास तो नेचुरल है, आना जाना ये तो नेचुरल है, इसको इसको हम स्वाभाविक ही समझे ना। हाँ, अगर मन में बहुत अशांति है, बहुत टेंशन है, तो ये जल्दी जल्दी श्वास चलता है। और हम कई ये भी मानते हैं हमारी जो श्वास है वो निश्चित है, अगर हम चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, क्रोधी होते हैं, ईर्ष्या के वश हैं, नफरत, द्वेष, वैर भाव ये सब के वश है, तो श्वास जल्दी जल्दी चलता और हमारी आयु कम होती जाती है। लेकिन जितना हम मन में शांत हैं, जितने शीतल हैं, जितने प्रेम स्वरूप स्थिति है, जितना दया, जितनी दया भावना है, रहम दिल है, कृपालु है, कल्याणकारी दृष्टि है, उतना उस आनंदमय स्थिति में हम हैं, तो ऑटोमेटिकली श्वास हमारे कम चलेंगे और आयु बड़ी होती जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो, यही योग है, यही राजयोग है। और परंतु उसके लिए नियम बहुत जरूरी है, यम नियम, ये तो पहली बात है, क्योंकि उसके बिना योग लगेगा ही नहीं। नॉन वेज खाते रहेंगे, मीट मछली अंडा सब अशुद्ध भोजन खाते रहेंगे, क्या होगा? आजकल इतनी बड़ी बीमारी फैल रही है, कोरोना वायरस, चारों ओर दुनिया में हाहाकार है कोरोना वायरस का, कहां कहां ये दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है। और उसका कारण बताते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या खाते हैं। तो देखो बाबा ने हमारा भोजन भी कितना शुद्ध रखा है, ये इतना शुद्ध कि पहले वो भोजन बाबा को भोग लगाओ उसके बाद खाओ, पवित्रता की बात तो है ही। ऐसे नहीं खाली पवित्र हम हैं भोजन बनाए, पर भोग भी लगाना है। जो भगवान को हम भोग धरेंगे वही हम खाएंगे, आज उल्टा हो गया है, जो हम खाएंगे वही भगवान को धरेंगे। हम मीट मछली खाते हैं, भगवान को भी वही धरेंगे, क्योंकि भगवान को वही खिलाएंगे जो हम खाते हैं। पर होना चाहिए जो भगवान को खिलाना वही हमें खाना है बस। तो इसीलिए हमारा जो योग है, जिसमें यम और नियम है, जिसमें एकाग्रता की बात आती है, मन किसमें लगाना है, बाबा कहते बिंदु समझकर बिंदु को याद करो। खाली आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, ये भी मोटा रूप हो जाता है, लेकिन इतना सूक्ष्म में चले जाओ, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, मैं आत्मा बिंदु, एकदम बिंदु। लेकिन जितनी ही सूक्ष्म हो उतनी ही महान हो, ऊंच हो, तो उस बिंदु का स्वमान भी याद रहे कि मैं आत्मा कितनी ऊंची हूं। अभिमान ना आए पर स्वमान जरूर रहे, आत्मा के जो मूल गुण हैं उनका मान हम स्वयं में पहचाने, ये योग है। जिसमें परमात्मा से सच्ची प्रीत हो, लगन हो, समर्पण महिता की समर्पण महिता हो, त्याग हो, तपस्या हो, ये योग है। और जब ये हम अनुभव करते हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरा विषय धारणा, धारणा का मतलब जो बाबा ने दिव्य गुण बताए हैं, हर वक्त अपनी चेकिंग, बाबा ने जो भी गुणों की बात कही है, धारणा की बात कही है, शुरू से लेकर, सुबह से लेकर रात्रि तक, हर प्रकार की धारणा हमें बाबा की मुरली से मिलती है। क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, सवेरे अमृत वेले कैसे पहले उठना है, बाबा को याद करना है, गुड मॉर्निंग करना है, यहाँ तक भी अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक, सोना भी कैसे है, नींद भी कैसी हो, रात को भी बाबा को कैसे याद करके सब समेट करके सोना है, हर चीज के लिए बाबा की श्रीमत है। तो सुबह से लेकर रात्रि तक बाबा ने हमारी सोच कैसी हो, हमारे बोल कैसे हो, हमारे कर्म कैसे हो, वो एक एक बात की बाबा ने हमें श्रीमत दी है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमें मालूम नहीं, हमें पता नहीं। अगर बाबा की मुरली सही ढंग से पढ़ते हैं, एक एक वाक्य महावाक्य अंडरलाइन करके अपने अंदर में धारण करते हैं, तो सब प्रश्नों का जवाब बाबा की मुरली से मिल जाता है, सब धारणाएं हमको समझ में आ जाती है। परंतु कई ऐसे लोग हैं जो वो डरते हैं। क्यों बाबा का ज्ञान से डरते हैं? समझते हम ये धारणा तो कर नहीं सकेंगे, न हम खान पान शुद्ध रख सकते हैं, न संग हम सही कर सकते हैं, न रोज क्लास में आ सकते हैं, न पवित्रता हमारे जीवन में है, तो वो धारणा से घबराते हैं, डरते हैं। ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, समझते भी है कि ये सही है, लेकिन धारणा से क्यों डरते हैं? वास्तव में धारणा तो अच्छी लगनी चाहिए, आप सबको अच्छी लगी ना धारणा? बाबा ने पवित्रता की बात कही तो क्या आपको डर लगता है धारणा करने में? बार पवित्रता को सहज धारण हो गया या मुश्किल लगा है? जो समझते सहज धारण हो गया हाथ उठाओ, कितना सहज है, पर दृष्टि को बदल देना है, और क्या करना है? दृष्टि को बदलना है ना, जो देह समझते थे उसकी बजाय आत्मा समझो। देह समझने से कुदृष्टि गई, कुवृत्ति गई, कुसंग हुआ, सब कु बाबा ने उस दिन बताया कु, अब कु को बदल के सु कर दो बस। तो इसलिए कैसे परिवर्तन आता है, बस एक ही शब्द है, देह की बजाय आत्मा देखो। अब लोग आत्मा को ही नहीं समझते तो जरूर देह अभिमान में रहेंगे, तो फिर कहते कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। हाँ कहते ना, जरूर ऐसे कहते कैसे होगा। लेकिन जो बाबा के बच्चे बनने होंगे वो कभी नहीं कहेंगे कैसे। बाबा ने भी मुरली में कहा कैसे कैसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ कैसे को बदल कर क्या करो, ऐसे। तो ऐसे कर दिया तो कुछ भी प्रश्न उठेगा ही नहीं। वाई 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 इंग्लिश में कहते क्यों 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 क्यों, वाई वाई की बजाय फ्लाई, एक सेकंड में उड़ जाओ, छोड़ो तो छूटो, नहीं तो क्यों 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 वाई 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 करके पकड़ के रखते हैं। एक डाली को पकड़ के रखा है और हम चलो झूल रहे हैं, बच्चा झूल रहा है डाली को, लेकिन माँ देखेगी अरे ये बच्चा झूल रहा है, कहीं गिर न जाए, डाली टूट न जाए, गिर न जाए, तो बेटा संभालना गिर न जाओ। तो वो डाली कमजोर होगी, टूटी तो गिरेगा बच्चा, लेकिन एक पंछी भी डाली पर बैठता है और खूब डाली को हिलाता है, हाँ, परंतु वो डरता नहीं है। मनुष्य डरेगा पर वो पंछी नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि अगर डाली टूट भी गई उड़ जाएगा, उसको तो पंख है ना, उसको अपने पंखों पर भरोसा है। अब मनुष्य होगा वो डाली को पकड़ के झूलेगा तो गिरेगा ना, डाली टूटेगी, उड़ तो नहीं सकता है। तो कई ऐसी बातों की डालियां हैं, डालियां टालियां, पेड़ की जैसे डालियां टालियां होती है, हम उनको पकड़ के रखते हैं, इसलिए डरते हैं कि छूट जाएगा छूट जाएगा। और सचमुच छूटना तो है ही है ना, एक दिन सबको छूटना है, कुछ भी नहीं चलेगा साथ, वो भी डर है। एक तरफ है डर, डर है कि छूट न जाए, दूसरी तरफ है टूट न जाए, हाँ गुम न हो जाए, न जाने सारा टाइम डर ही डर, डर ही डर है। तो अंतर आत्मा कितनी कमजोर हो जाती है हर बात में डर, क्योंकि अंदर में पाप भी तो खाता है ना, उसका भी डर। अंतर आत्मा जो असल रूप में वो तो कितनी शुद्ध है, और वो शुद्ध आत्मा के सामने जब ये बातें आती है तो अंदर में वो अशुद्धि आ गई, खराबी आ गई, कमजोरी आ गई, खामियां आ गई, विकृतियां आ गई, तो डर ही डर पैदा होते, तो डरने की क्या जरूरत है। इसीलिए बाबा कहते सच तबीठो नच, जो सच्चा है वो तो नाचेगा, उसको कोई डर नहीं है। सच की नाव हिलेगी लेकिन डूबेगी कभी नहीं। ब्रह्मा बाबा के आगे कितनी बातें आई लेकिन ब्रह्मा बाबा बिल्कुल नहीं हिले। हम हिलते इसलिए क्योंकि अंदर जरूर न कोई खोट होगी या कुछ पकड़ा हुआ रखा है, पकड़ा है, होल्ड किया है, और जहां पर पकड़ा हुआ रखा है फिर तो डरेंगे क्योंकि छूट न जाए, छूट न जाए, छूट न जाए। पर बाबा कहते पहले तो मन से छोड़ो, छोड़ो तो छूटो, मेरा है ही नहीं। तो या तो पंछी की तरह छोड़ो तो छूटो, एक सेकंड में उड़ जाओ, न्यारे हो जाओ, या तो बाबा दूसरा मिसाल देते हैं, कैसे कछुआ होता है, जब भी देखता है कि कुछ ऐसा हार्ड है, कुछ ऐसा सख्त चीज है, कुछ तो या कोई कुछ मना लगता है कि ये प्रॉब्लम, ये कुछ डेंजर है, तुरंत क्या कर लेता है, अपने अंगों को समेट लेता है, कैसे हाथ पैर सिर सब समेट लेता है और सुरक्षित हो जाता है। तो यहाँ भी बाबा ने हमें सिखाया है, कुछ भी ऐसी बात हो जाए ऐसे न्यारे बन जाओ, चुप रहो। कल भी बाबा ने कहा, परसों, चुप रहो। हमारे सारे जो आधे देखते दुनिया के जो झगड़े हैं, जितने झगड़े हैं दुनिया में, उन आधे झगड़ों का, घर घर में झगड़े हैं, उन आधे झगड़ों का जो कारण होता है ना, वो हमारे बोल होते हैं, हमारे शब्द, शब्द बोल, हम जो बोलते हैं, ये तुमने ऐसे क्यों बोला, ये क्यों कहा, ये क्यों, प्रश्नों की बौछार चालू हो जाती है और झगड़ा चालू हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते चुप, मैं चुप रहूंगी। एक पहले एक पिक्चर आई थी, मैं चुप रहूंगी। चुप रहना है बस, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, सच्चे को डरने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम अंदर में सच्चे और बाबा के साथ हैं, बाबा हमारे रक्षक हैं, बाबा को हम समर्पित हैं, तो कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है, ये निश्चित है। कोई कितना भी कुछ करने की कोशिश करे नहीं कर सकेगा, वही ब्रह्मा बाबा का इतना पक्का निश्चय था। हम कौन हैं, हम किसके हैं, दादी जानकी देखो कितने नशे से कहती है ओम शांति 3 बार कह करके, फिर कहती मैं कौन, मेरा कौन और मैं किस लिए, बस नशा चढ़ जाता है, इतना निश्चय बुद्धि है। तो हमारी धारणा में इतना निश्चय हो कि हम कौन, हमारा कौन और हम किस लिए हैं, तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है, एक कवच तैयार हो जाएगा और रक्षा करेगा किसी से भी, कोई भी कुदृष्टि हो, कुछ भी हो, उससे हमारी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि हमारी धारणा इतनी स्ट्रांग हो। लेकिन वो अंतर में हम लक्ष्य रखें कि हमको इतनी ऊंची धारणा करनी है, लेकिन जो कमजोर होगा ना, वो सोचे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे को कैसे नहीं, ऐसे बस, ये हमको परिवर्तन करना। और बाबा उसके लिए मुरली में हर बार सुनाते हैं। तो जब हमारी अंदर में ये ऐसी धारणाएं आती है, आत्मा इतनी मजबूत बनती जाती है। और उसके लिए बाबा कहते किसी दूसरे को मत देखो, जो दूसरे कर रहे हैं उनका हिसाब किताब, उनके कर्मों का खाता, उनका जो कुछ है वो उनका अपना है, हमको देखना है अपने आप को, मैं कैसा हूं बस। तो इसलिए जब इस प्रकार की हमारी धारणा होगी, एक तो सच्चाई होगी अंदर में, क्योंकि बेहद का वैराग्य भी है, और साथ साथ किसका साथ है, हमें ईश्वर का साथ है, तो जिसका साथी भगवान है उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, इतना अंदर में नशा रहता है जो उस नशे के आधार से ये सारी जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, हम उनको बहुत सहज पार कर लेते हैं। ये सब साइट सीन लगती है, हम आगे जा रहे हैं ये दृश्य तो यहीं के यहीं रह जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं वो बातें जो है वो दोबारा नहीं आती है, लेकिन हम बातों को पकड़ के रखते हैं, मन बुद्धि में उनको इतना स्थान दे देते हैं। जो बाबा की इतनी ऊंची ऊंची बातें हैं उनके लिए तो मन बुद्धि में स्थान ही नहीं है। फिर कहेंगे क्या करें, भूल जाते हैं भूल जाते हैं। कहिए, यही कहते क्या करूं, मैं बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ, भुलक्कड़ हो गया हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। लेकिन जो किसी ने मुझे 10 साल पहले कोई ऐसा कड़वा शब्द बोला था वो तो कभी भूला नहीं, वो तो सदा याद है। और जैसे ही उनसे मिलेंगे, इसने मुझे 10 साल पहले ये कहा था, वो बात तो भूलेगी नहीं। और बाकी कहेंगे भूल गया भूल गया भूल गया, आज भुलक्कड़ हो गया हूँ बहुत, क्या पता क्यों भूल जाता हूँ। तो जो बातें भूलनी चाहिए वो भूलती नहीं, और जो बातें याद रखनी चाहिए वो याद आती नहीं। अब यही अंतर अपने अंदर देखना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, अंदर में क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना है। यही तो बाबा हमें तीसरा नेत्र देते हैं ना। अभी नेत्र अगर ये आंखें समझो दिखाई नहीं देता, अंधेरा है तो कहीं भी ठोकर लगेगी ना, पर लाइट आ गई दिखाई देता है तो ठोकरों से तो बच जाएंगे ना, हम सावधान हो जाएंगे, भाई इस तरफ नहीं जाना है, या यहाँ पर ये विघ्न है। तो जैसे हमारी धारणा ऊंची होती जाएगी, हम महसूस करेंगे कि हमारा जीवन एकदम बदल गया, और डरने की तो कोई बात ही नहीं है, भले लोग कुछ भी कहे। हमने देखा है जब हम बाबा के पास आए, क्या नहीं कर सुना कहा लोगों ने, ये तो चल नहीं सकेंगे, ये तो ये ऐसे है नहीं कर पाएंगे। और आज क्या कहते, वाह वाह धन्य है आप, धन्य है धन्य है, हम तो पीछे ही रह गए। तो इसीलिए बाबा हर बार मुरली में ये भी कहते, दृढ़ता लाओ दृढ़ता लाओ मुरली में। वो दृढ़ता आती है मुरली, जैसे हम पढ़ते जाते हैं अपने अंदर में उसका स्वरूप बनते जाते हैं, वो दृढ़ता आती जाती है। सब बाबा कहते अंडरलाइन करो, वो स्वरूप बनते जाओ इस हर मुरली में। बाबा कहते जानना मानना फिर बनना, ये बनना है, खाली सुनना नहीं, वो कनरस हो जाएगा। जान लिया मान लिया पहचान लिया, फिर उसको बनना है वैसा ही, तब कहेंगे कि हाँ हम धारणा के सब्जेक्ट में भी पास है। केवल ज्ञान नहीं है कि हाँ आत्मा आत्मा भाई भाई, लेकिन सचमुच क्या मैं उस भाई भाई की दृष्टि से एक दो को देखता हूँ, सचमुच वो दृष्टि है, ये अपनी चेकिंग है। तो हर वक्त अपनी चेकिंग ये करते रहना, ये सच्ची धारणा है। और एक एक गुण, जो बाबा कहते सवेरे उठो एक संकल्प करो, आज मेरे अंदर जो सहनशीलता की कमी थी वो आज मैं अपने अंदर सहनशीलता की पक्की धारणा करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं मुख से कुछ नहीं बोलूंगी, शांत रहूंगी। ये भी बहुत बड़ी सहनशीलता है, कोई ऐसे गलत फलत कुछ भी बोल रहा, अच्छा एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, चलो और ज्यादा बोल रहा है तो उस समय क्या समझो, हाँ ये अपना पार्ट बजा रहा है, इसका ये पार्ट है, और आगे कर रहा है तो फिर क्या सोचो, कोई बात नहीं मेरा कोई हिसाब किताब है, चुप तू हो रहा है बस, और आगे कर रहा है तो फिर क्या सोचो, हाँ ध्यान तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो इतना कह रहा है जरूर कुछ तो बात होगी ना। आज जैसे कहीं धुआं है तो हम कहेंगे धुआं, कोई कहेगा धुआं क्यों है, हम कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं होता रहता है, पर धुआं है इसका मतलब कहीं आग भी होगी, तो संभालना है देखना है ध्यान देना, ऐसे नहीं होता रहता है। तो अगर कोई बार बार भी कोई मुझे कुछ कहता है, वो तो मेरा शुभ चिंतक है, वो चाहता है कि मैं वो कमजोरी अपनी मिटाऊं, तभी तो कह रहा है, नहीं तो क्यों कहेगा। तो फिर अपने अंदर टटोलना होता है कि वो तो मेरा शुभ चिंतक है, मेरी भलाई के लिए मुझे कह रहा है, तो मुझे बदलना होगा। पर मान लीजिए वो शुभ चिंतक की भावना नहीं है, वो मेरे से ईर्ष्या करता है, मेरे से नफरत करता है, मेरा नाम बदनाम करना चाहता है, जो कई बातें होगी, उस समय क्या सोचो अंदर में, हाँ ये आत्मा बहुत दुखी है, ये आत्मा बहुत अशांत है, ये आत्मा बहुत कमजोर है, ये आत्मा खाली है। अब जो कमजोर होगा, दुखी होगा, अशांत होगा, खाली होगा, उस पर तो दया करनी होती है, उससे नफरत थोड़ी करनी होती है, तो दया करते, बेचारा, ये बेचारा है। पर बाबा ने तो हमको कितना ऊंचा बना दिया है। तो एकदम जो दृष्टि हमारी क्या क्या थी, कैसी थी, सोच कैसी थी, वो एकदम बदल जाती है और हम उस बात में पास हो जाते हैं। तो पहले तो आग दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद आपके पाँव पड़ेंगे, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, जरूर होगा। और यहाँ तक कहेंगे कि मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने बहुत भूले किया, मुझे माफ कर दो, यहाँ तक भी कहेंगे, आप तो धन्य हो, आप तो धन्य हो, ये भी मानेंगे, क्योंकि अंतर आत्मा तो समझती है ना, ऐसा नहीं कि नहीं समझती है। इसलिए या तो अंतर्मुखी हो जाओ कछुए के समान, हाँ आत्मा बन जाओ, बिल्कुल बिंदु बन जाओ, या तो छोड़ो तो छूटो, पंछी बन जाओ, उड़ जाओ, न्यारे हो जाओ, ये हमारी धारणा है। और फिर जो बाबा सेवा कहते हैं, तो चौथा सब्जेक्ट हमारा सेवा का है, ये भी बाबा कहते केवल सेवा शब्द मत कहो, क्योंकि दुनिया में सेवाएं बहुत है, सोशल जो वर्कर्स हैं वो सेवा ही करते हैं, सामाजिक सेवा दुनिया में कितनी हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। तो हम भी केवल सेवा शब्द कहेंगे तो लोग समझेंगे ये क्या सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा तो स्थूल सेवा कोई सेवा समझते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम जड़ों की सेवा करते हो, वो तो खाली पत्ते पत्ते की सेवा करते हैं, तुम जड़ों की सेवा करते हो। पेड़ को पानी देना है तो पत्ते पत्ते को देने से थोड़ी पानी मिलेगा पेड़ को, वो तो बीज को देना होता है, जो जड़े हैं, फाउंडेशन है, उसको पानी देना है तो पेड़ को तो अपने आप पहुंचेगा। तो बाबा ने जो हमें सेवा दी है कि उनकी आत्मा को जगाना है, उनको परमात्मा से मिलाना है, ये बहुत ऊंची सेवा है। कई कहते हैं भाई पहले तो पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले पेटोबा फिर विठोबा, ऐसे बोलते हैं। आपका अगर पेट खाली है तो आपका ज्ञान कैसे सुनेगा कोई भी। हम कहते ऐसे नहीं कि ज्ञान ही ज्ञान देना है, भले पेट खाली है तो खिलाओ ना, किसने मना किया, बाबा मना थोड़ी करते हैं। अब यहाँ आते हैं कितना खा के जाते हैं, बाबा का भंडारा खुला है, किसी से कुछ पैसा लेते हैं क्या, किचन में ये टोकन है, ये कूपन है, इतना पैसा दो फिर खाना खाओ, नहीं, ये तो भगवान का घर है। लेकिन केवल वो ही खा के जाना तो, और फिर अपने आत्मा में ज्ञान नहीं भरना तो वो चढ़ता है। इसीलिए ज्ञान भी जरूर सुनना है, अपने जीवन में परिवर्तन भी लाना है, ये सच्ची सेवा है। तो आत्मा की सेवा ये सबसे ऊंची सेवा है, और जब वो सेवा हो जाती है तो प्रकृति तो दासी बन जाती है, वो तो सेवक अपने आप बन जाती है, शिव बाबा रक्षक अपने आप बन जाते हैं, गोद में उठा लेते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं, क्योंकि अंदर में शुद्धि है, पवित्रता है, मन साफ है, बाबा की याद है, तो आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाती है, जो विघ्न कोई विघ्न लगते नहीं है, प्रकृति सेवक बन करके सेवा करती है। परंतु उसके लिए हम कितने न्यारे हैं, हम उसके पीछे पीछे इच्छाओं के मुरीद हैं, इच्छाओं के पीछे बन जाते हैं, तो इच्छाएं जो है वो तो परछाई की तरह और लंबी लंबी होती जाती है और रोशनी से हम दूर जाते जाते हैं। इच्छाएं कम कर दो और अच्छा बनने का लक्ष्य हो जैसे बाबा कहते हैं, तो वो जो इच्छाएं अपने आप बाबा पूरी करता है, सचमुच पूरी करता है, हमको उनके पीछे जाने की जरूरत ही नहीं रहती है। लेकिन ये तब होगा जब अंतर में ये भावना होगी कि हमको सेवा करनी है, सेवा की लगन होगी। और बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा, तीन प्रकार की सेवा है मेन, मनसा वाचा कर्मणा। किसको ज्ञान देना, ये तीसरा नेत्र उसका खोलना, ये तो बहुत बड़ी सेवा है। मन से किसके लिए अच्छा सोचना, दुआएं देना, ये कितनी बड़ी सेवा है। अपने गुणों से किसी को प्रेरणा देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। ना वो मिसाल देते हैं कि एक व्यक्ति बेचारा भूखा था, तो वो किसी मिठाई की दुकान में गया और कहा कि मुझे भूख लगी है, थोड़ी मिठाई दे दो। अब पैसा तो नहीं दे सकता था, मिठाई मांगी, लेकिन उस दुकानदार ने उसको डांट दिया, उसको गाली दी, गुस्सा किया। तो उसने आखिर में कहा, अच्छा साहब भले मिठाई मत दो लेकिन मीठा तो बोलो, मीठा तो बोलो, भले मत दो ना मिठाई, चलो उसमें पैसा लगेगा, वो मेरे पास नहीं है, आप नहीं देंगे, पर प्यार से भी तो बोल सकते ना भाई, हाँ जरा माफ करो, हाँ जाओ भले। इसका मतलब अगर नहीं प्यार से बोल सकते ना, हमारे अंदर वो मिठाई बेचते तो हैं पर मिठास कहाँ है जीवन के अंदर। इसीलिए बाबा तो हमें यही कहते हैं कि चलो और कुछ सेवा न कर सको, अपने गुणों किसे सेवा करो, किससे प्रेरणा दे सको। देखो इसका ये कितना शांत रहता है, ये भी एक सेवा है। ये देखो कितना रिस्पेक्ट से बोलता है, कितना रिस्पेक्ट, ये भी एक सेवा है। स्थूल रूप में न भी कर सको मानो, वैसे तो दोनों करना है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों। जैसे बाबा कई प्रोफेशनल को कहते हैं ना, डबल बनो, डॉक्टर हो तो डबल बनो, खाली शरीर के डॉक्टर मत बनो, मन के भी डॉक्टर बनो, क्योंकि 80% शरीर की बीमारियां तो मन के कारण है। अगर मन को ठीक कर सके तो शरीर को आधा पौना तो अपने आप ठीक हो जाएगा। एक मिसाल देते हैं कि एक डॉक्टर हमारे पास आए थे, तो हमने उनसे पूछा कि आपको किसने परिचय दिया यहाँ का, तो कहा कि मेरे पेशेंट ने परिचय दिया। नहीं तो वैसे डॉक्टर्स अपने पेशेंट को कहते हैं ना, डॉक्टर्स अपने पेशेंट को कहते हैं कि आप लोग मेडिटेशन सीखो। आजकल डॉक्टर्स बताते हैं, दवाई तो देंगे फिर कहेंगे आप मेडिटेशन सीखो, उससे आपको फायदा होगा, शांति मिलेगी। लेकिन वो डॉक्टर आया और उसको पेशेंट ने उसको ज्ञान दिया। कैसे पेशेंट ने ज्ञान दिया, क्योंकि एक बार वो हमेशा अपने मरीजों को यही कहता था, कुछ भी दवाई देगा, कोई बीमारी की दवाई देगा, फिर कहेगा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ, डॉक्टर को ये आदत होती कहने की, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, ये दवाई ले लो। तो एक पेशेंट को जब इसने कहा कि चिंता मत करो, तो पेशेंट को गुस्सा आ गया। उसने कहा, साहब आप केवल यही कहते हो चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता कैसे नहीं करूं वो भी तो बताओ, वो भी तो बताओ चिंता कैसे नहीं करूं। अब वो कैसे बताएगा नहीं करो, कैसे नहीं, बाबा तुमको ज्ञान देते कैसे चिंताओं से मुक्त हो जाओ। ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में रखो, हर बात में कल्याण है ये बुद्धि में रखो, तो चिंता करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, जो होगा कल्याणकारी होगा, अच्छा ही होगा। तो ये ज्ञान है, परंतु उस डॉक्टर को ये नहीं मालूम था कि मैं क्या बताऊं पेशेंट को कि चिंता नहीं करो। तो फिर दूसरा एक पेशेंट आया जो कैंसर का पेशेंट था, कैंसर का पेशेंट। उसको तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, बस 6 महीने से ज्यादा तुम नहीं जिंदा रहोगे। लेकिन वो 2 साल के बाद आया और जिंदा देखा, तो कहा ये कैसे जिंदा है आप? इन्होंने तो डॉक्टर के था, मैंने तो इसको कहा 6 माह से ज्यादा नहीं रह सकोगे। तो पेशेंट से पूछा कि कैसे तुम्हारी आयु बढ़ गई, कैसे ये खत्म हुआ? बोला भाई चिंता नहीं करता हूँ। तो डॉक्टर को इतना अच्छा लगा, डॉक्टर ने कहा अच्छा तुम चिंता नहीं करते हो, कैसे नहीं करते वो मुझे बताओ। तो पेशेंट ही डॉक्टर बन गया डॉक्टर को समझाने के लिए, और फिर वो पेशेंट ने उस डॉक्टर को वो यहाँ ले आया कि डॉक्टर की ये हमारा डॉक्टर है, इनको आप ज्ञान सुनाओ। वो दूसरों को कहता था मेडिटेशन को, खुद कभी नहीं करता था, खुद कभी नहीं, खाली एडवाइस देना वो तो कोई बहुत सहज है, किसी को एडवाइस दो, किसको अच्छी राय दो, वह खुद नहीं करना। बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, लोग आते हैं समझते हैं थोड़ा, कहते हैं आप लोगों का ज्ञान बहुत अच्छा है, ये सबको देना चाहिए, पर मैं ये लूं वो नहीं सोचते, मुझे भी लेना है ये नहीं सोचते। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि पहले वो सेवा करो, जड़ की सेवा करो। किसी को चलो खाना खिला दिया, अभी 2 दिन खिलाया 4 दिन खिलाया, वो आपके पास आ जाएगा, बार बार आएगा खाना खिलाओ, परंतु वो कैसे हाथ पैर उसके मजबूत है, वो कुछ भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? खाली खाने के लिए थोड़ी आएगा, उसको कैसे उसको मेहनत करनी है वो भी तो सिखाना होगा ना, नहीं तो वो आपके अधीन हो जाएगा। तो इसीलिए कैसे वो अपने पांव पर खड़ा रहे वो भी तो सिखाना होगा, तो मेहनत करना भी सिखाना होगा। इसलिए बाबा देखो कितना हमें कहते हैं, आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी, ये सब भी विकृतियां हैं जिससे आत्मा और कमजोर होती जाती है। तो इसलिए सेवा करो, पर पहले मन से, वचन से, कर्म से सेवा करके उसके जीवन में परिवर्तन लाओ, और जब जीवन में परिवर्तन आए तब आत्मा में शक्ति आएगी, ये सच्ची सेवा है। और एक सेवा एक टाइम पर नहीं, तीनों सेवा एक साथ, भावना अच्छी हो, वाणी भी अच्छी हो, कर्म भी श्रेष्ठ हो, ऑटोमेटिकली वो आत्मा प्रेरणा लेगी और वो बदल जाएगी। पर हमारे अंदर ही आलस्य होगा, अलबेलापन होगा, बहानेबाजी होगा, तो मैं खुद ही कमजोर होती जाऊंगी। इसीलिए कभी भी कमजोरी को अपने नजदीक लाने नहीं देना, ये माया है, माया को अच्छी तरह से परखना है। दुनिया में ये कोई नहीं जानता माया क्या होती है, लेकिन बाबा ने हमें माया की परख दी है, कैसे कैसे माया आती है। हर मुरली में बाबा माया को जरूर याद करते हैं, माया हमारी इतनी बड़ी दुश्मन है, आगे दुश्मन नहीं थी, हम तो मुरीद थे उनके। माया कैसे आती है, सबसे पहले माया आएगी ना, मेरा हमारा नाक पकड़ती है, नाक पकड़ना माया ने समझो माया आई है, नाक पकड़ना माना कंफ्यूजन, पता नहीं बाबा कहते तो हैं पर कैसे होगा, बाबा ने ये कहा है लेकिन मुश्किल लगता है, ये कंफ्यूजन अंदर में बहुत कंफ्यूजन है, समझ नहीं सकते क्या करे क्या ना करे, ये माया ने नाक पकड़ा है। जैसे किसी का नाक पकड़ो ना तो श्वास लेना भारी हो जाता है, तो अंदर में कंफ्यूजन है तो माया ने नाक पकड़ा है, ये समझ लो। कंफ्यूजन को खत्म करो, जो बाबा कहते वो 100% राइट है, आत्मा के कल्याण की बातें हैं वो। दुनिया वाले तो संसार की बातें करेंगे, वो तो ईर्ष्या, नफरत, वैर, दुश्मनी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उनकी बातें करेंगे क्योंकि माया के मुरीद हैं। इसलिए बाबा की बातों में कभी कंफ्यूजन नहीं लाना। फिर किसी ने कुछ कह दिया तो थोड़ा मन चलने लगा। अब ये देख सोचो माया आई है, ये माया कान पकड़ती है, अंदर कुछ न कुछ बुरे संग में आकर के कुछ गलत सुन लिया, ये माया ने आपका कान पकड़ा है। अपने अंदर कंफ्यूजन माना नाक पकड़ा है, और किसने के सुनाए हुए पे आधार पर कंफ्यूजन, ये कान पकड़ा है माया ने। फिर माया क्या करती है, उसके बाद थप्पड़ मारती है। तो थप्पड़ मारना माना, जब थप्पड़ मारते ना तो मुंह ऐसे टेढ़ा हो जाता है, तो थप्पड़ मारना माना किसी दूसरे को देखना, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, दूसरों को देखते रहना। बाबा कहते किसी को मत देखो, हर एक का कर्म अपना, भाग्य अपना, किसी को मत देखो। आप किसी के जीवन में मत जाओ, आप अपने आप को देखो, मैं क्या कर रहा हूं। तो अगर औरों को देख रहे हैं माना माया ने थप्पड़ लगाया, ये समझ लो। फिर और क्या करती है माया, हाँ धक्का देती है पीछे, सिर पीछे हो जाता है, पीछे मुड़ते हैं। तो पीछे मुड़ करके देखा माना अपने पूर्व जीवन को देखा। कई होते हैं ना बड़ा अभिमान नशा दिखाते, कहते बहन जी मैं आपको क्या बताऊं, मैं पहले इतना शराब पीता था, इतना सिगरेट पीता था, हाँ इतना मेरे बहुत बुरी आदतें थी, बहन जी मैं तो बहुत बदल गया हूँ। बड़ा उसका नशा चढ़ता है, मैं तो बहुत बदल गया हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हो गया हूँ। माना पीछे भी मत देखो, ये पीछे भी नहीं देखना है, बदले तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है। बाबा तो कहते आपको तो देवता बनना है, उसकी भेंट में तो बहुत पीछे है। कोई डल स्टूडेंट होगा, और डल स्टूडेंट हमेशा फेल होता रहता है, और एक बार थोड़ा पास हो गया, 40% मिल गया, पास हो गया, वो सोचेगा मैं तो बहुत होशियार हो गया हूँ क्योंकि मैं पास हो गया। लेकिन जो होशियार स्टूडेंट होगा उसको 90% मिला तो भी कहेगा मेरा 10% कहाँ गया, क्यों 90 मिला, 100 out of 100 क्यों नहीं मिला। तो वो 100 से अपनी भेंट करेगा, और जो डल स्टूडेंट होगा वो 0 से भेंट करेगा। तो हमको किससे भेंट करना है, बहन जी मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ उससे भेंट करना है, या हमको देवता बनना है उससे भेंट करना है कि अभी तक मैं कितना पीछे हूँ। बाप समान बनना है, कितना बड़ा लक्ष्य बाबा ने दिया है। लक्ष्मी नारायण बनना है, कितना बड़ा लक्ष्य बाबा ने दिया है। संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, ये बड़ा लक्ष्य है, उसकी भेंट में मैं कहाँ तक हूँ। तो न किसी से भेंट करो अपनी, न किसी को देखो, न किसी की सुनो, न अंदर में कंफ्यूजन में आओ, बस सीधा रास्ता ले लो, जो बाबा कह रहे उस पर चलना है बस। और फिर अगर माया ने पीछे किया, धक्का दिया, नीचे गिरे तो बेहोश भी हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। फिर माया मार भी डालती है, कोई न कोई विकार के वशीभूत हुए। बाबा कहते काम विकार के वशीभूत हुए, पांचवें मंजिल से गिरे, हड्डियां टूट गई एकदम, फिर तो उठ भी नहीं सकेंगे। इसलिए हर कदम पर सावधान, हम क्या बोल रहे हैं कर रहे हैं वो तो दूर, हम क्या सोच रहे हैं उस तक अपना ध्यान हमें देना होगा। क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ सोच रही हूँ ये बाबा की श्रीमत अनुसार है? अगर बाबा इस समय होते तो बाबा क्या करते, क्या कहते, क्या सोचते? अब वो बाबा को बीच में लाया माना वो हमारे लिए एक मापदंड है, हमारे लिए वो कसौटी है, उस अनुसार हमें करना है, उस अनुसार हमें चलना है, क्योंकि हमको बाप समान बनना है। बाबा कर्मातीत बन गए, संपूर्ण हो गए, बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं वतन में कि बच्चे कब संपूर्ण बनेंगे। विनाश करने वाले तैयार बैठे हैं लेकिन स्थापना पूरी हुई नहीं है, इसीलिए हम स्थापना करने वाले हैं, हम कितना तैयार हुए हैं अपनी ये चेकिंग करते रहना है। और कैसे होगी चेकिंग, बाबा की मुरली से, हर वाक्य से हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं, और दृढ़ता ला करके अपने अंदर परिवर्तन लाते जाएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। चलिए
बाबा जिगर में तेरा प्यार, दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत
और शिक्षाएं जीवन का आधार।